लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में ईश्वर की निगाहों में गरीबों का विशेष स्थान के बारे में जिक्र करते हुए कहा, ईश्वर के हृदय में गरीबों के लिए एक विशेष जगह है। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने अपने को उनकी तरह ही दरिद्र बना लिया। जब उन्होंने ईश्वरीय राज्य की घोषणा शुरू की, उन्होंने अपने को उनमें से एक बना लिया। मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया। इस भांति उन्होंने हम सबों को करुणा की शिक्षा दी, जो स्वर्ग राज्य के लिए एक अति महत्वपूर्ण बात है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यही कारण है कि मैं एक गरीब कलीसिया की चाह रखता हूँ जो गरीबों के लिए हो। वे हमारे लिए बहुत सारी बातों की शिक्षा देते हैं। हम उनमें ख्रिस्त को देखने हेतु बुलाए गए हैं, अपनी आवाज को उनके अधिकारों के लिए उठाने, साथ ही उनके संग मित्रता में प्रवेश करते हुए उन्हें सुनने, उनके बारे में बोलने और ईश्वर के रहस्यात्मक विवेक का आलिंगन करने हेतु, क्योंकि उनके माध्यम से ईश्वर अपने को हमारे लिए प्रकट करना चाहते हैं। श्रोताओं, हमारी प्रतिबद्धता विशेष रूप से प्रचार और सहायता की गतिविधियों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं है। पवित्र आत्मा जो हमें एकजुट करती, वह एक अनियंत्रित सक्रियता नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर एक ख्याल है जो दूसरों को एक निश्चित अर्थ में अपनी तरह एक मानता है। एक प्रेमपूर्ण ख्याल व्यक्तियों के रूप में उनके लिए एक सच्ची सेवा की शुरुआत है, जो मुझे प्रभावकारी ढंग से उनकी भलाई करने को प्रेरित करता है। यह गरीबों में निहित अच्छाई उनके जीवन, संस्कृति और विश्वास के जीवन जीने के तरीकों की प्रशंसा करना है। सच्चा प्रेम सदैव अपने में विचार मंथन करता है, और जो हमें दूसरों की सेवा करने को अग्रसर करता है, जो अन आवश्यकता या दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने में शारीरिक रूप में सुंदर दिखने से बढ़कर है। प्रेम जिसके द्वारा हम दूसरों को प्रसन्न पाते हैं, वह हमें उसे मुफ्त में कुछ देने के लिए प्रेरित करता है। गरीब व्यक्ति जब प्रेम किया जाता है, तो वह अपने में अति मूल्यवान होने का अनुभव करता है, और यह हमें गरीब के लिए सच्चे विकल्प को किसी आदर्श से अपने निजी या राजनीतिक हित के लिए उनके शोषण के किसी भी प्रयास से भिन्न बनाता है। केवल इस आधार पर, इस सच्चे और निष्ठामय निकटता के द्वारा हम गरीबों को उनकी स्वतंत्रता के मार्ग में अग्रसर कर सकते हैं। केवल ऐसा करने के द्वारा ही हर ख्रिस्तीय समुदाय में गरीब अपने को सहज महसूस करेंगे। क्या यह दृष्टिकोण राज्य के सुसमाचार की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति नहीं होगी? गरीबों के लिए विकल्प के बिना सुसमाचार की घोषणा, जो हमारे लिए करुणा का सर्वोत्तम रूप है, गलत समझे जाने या शब्दों के महासागर में डूबे जाने की जोखिम में पड़ जाता है, जहां हम अपने को जन संचार माध्यमों के द्वारा प्रतिदिन निगलता हुआ पाते हैं। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि चूंकि यह प्रेरितिक प्रबोधन कैथोलिक कलीसिया के सदस्यों को संबोधित किया गया था, मैं खेद प्रकट करते हुए यह कहता हूं कि सबसे खराब भेदभाव जिसका सामना गरीबों को करना होता है, वह उनके लिए आध्यात्मिक देखरेख की कमी है। अधिकांश गरीब अपने में विश्वास को लेकर एक विशेष खुलापन पाते हैं। वे ईश्वर की खोज करते हैं और हमें चाहिए कि हम उन्हें उनकी मित्रता, आशीष, संस्कारों का अनुष्ठान करते हुए उन्हें देने और विश्वास की यात्रा में बढ़ते हुए उसे मजबूती प्रदान करने में असफल ना हों। गरीबों के लिए हमारे विकल्प को चाहिए कि वह मुख्य रूप से एक विशेष अधिकार और श्रेष्ठ धार्मिक देखभाल में परिणत हो। श्रोताओं, कोई यह न कहे कि हम उनके निकट नहीं रह सकते, क्योंकि उनके स्वयं की जीवन शैली दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ध्यान की मांग करती है। यह हमारे लिए वह बहाना है जिसे हमें विद्यार्जन, व्यवसाय या व्यावसायिक और यहाँ तक कि कलिसियाई क्षेत्रों में भी सुनने को मिला है। हालांकि यह काफी हद तक सच है। हमें चाहिए कि हम लोक धर्मियों की आवश्यक बुलाहट और प्रेरिताई की ओर विशेष ध्यान दें, जिससे भौतिक वास्तविकताओं और सभी मानवीय गतिविधियों को सुसमाचार के द्वारा रूपांतरित किया जा सके। हम में से किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह गरीबों की चिंता और सामाजिक न्याय के कार्य से मुक्त है। आध्यात्मिक परिवर्तन ईश्वर और पड़ोसी के लिए प्रेम की गहराई, न्याय और शांति के लिए उत्साह, सुसमाचार के अनुरूप गरीब और दरिद्रता का अर्थ हर किसी के लिए जरूरी है। मुझे इस बात का भय है कि इन शब्दों की भी व्याख्या दी जाएगी या बिना कोई सच्चे व्यावहारिक प्रभाव के इस पर वाद विवाद किया जाएगा। इस बात को अभिव्यक्त करते हुए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं सभी ख्रिस्तियों से खुलेपन और तत्परता में विश्वास व्यक्त करता हूं और मैं इस बात की खोज करने को उन्हें कहता हूं। एक समुदाय की भांति हम सकारात्मक रूप से इस बुलाहट को नामीकृत करें। श्रोताओं, गरीबी के संरचनात्मक कारणों को हल करने की आवश्यकता में देर नहीं की जा सकती है। न केवल समाज की अच्छी व्यवस्था हेतु इसकी आवश्यकता के व्यावहारिक कारण के लिए, बल्कि इसलिए कि समाज को एक ऐसी बीमारी से ठीक करने के लिए जो इसे कमजोर और निराश करती है और जो केवल नए संकटों की ओर ले जाती है। कल्याण परियोजनाएं जिसके द्वारा कुछ जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, केवल अस्थायी प्रत्युत्तर मानी जानी चाहिए। जब तक बाजारों की पूर्ण स्वायत्तता और वित्तीय सट्टेबाजी को खारिज करके और असमानता के संरचनात्मक कारणों को दूर करते हुए गरीबों की समस्याओं का मौलिक रूप से हल नहीं किया जाता, तो दुनिया की समस्याओं का समाधान या किसी अन्य समस्याओं का जिसे हम अपने में पाते हैं हल नहीं किया जा सकता है। असमानता सामाजिक बुराइयों की जड़ है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गॉडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पुर्तगाल के नागरिक और कलीसिया के अधिकारियों के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा फ्रांसिस विश्व युवा दिवस 2023 में भाग लेने के लिए अगस्त में लिस्बन और फतिमा की यात्रा करेंगे। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने सोमवार 22 मई को एक बयान में आधिकारिक घोषणा की कि संत पापा फ्रांसिस इस वर्ष 2 से 6 अगस्त तक लिस्बन की यात्रा करेंगे और इस बीच 5 अगस्त को फातिमा की तीर्थ यात्रा करेंगे। संत पापा फ्रांसिस परमाध्यक्ष के रूप में दूसरी बार फातिमा की तीर्थ यात्रा करेंगे। संत पापा ने 12 से 13 मई 2017 को कोवा दा इरिया में धन्य कुंवारी मरिया के दर्शन की शताब्दी के लिए तीर्थालय का दौरा किया था। उस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया को शिथिल करने वाले युद्धों के अंत के लिए प्रार्थना की थी। फातिमा में धन्य कुंवारी मरिया 100 साल पहले 3 पुर्तगाली बच्चों को दिखाई दी थी। तब वह एक गरीब किसान गांव था। 38वां विश्व युवा दिवस मूल रूप से 2022 में पुर्तगाली राजधानी में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस वर्ष के विश्व युवा दिवस के आदर्श वाक्य के लिए संत पापा फ्रांसिस ने मरिया उठी और शीघ्रता से चल पड़ी, संत लूकस अध्याय 1:39 पद को चुना है। दूत संवाद के बाद मरिया अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ से मिलने के लिए शीघ्रता से चल पड़ती हैं। उधर कैथोलिक कलीसिया संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 21 मई से 28 मई तक लौदातो सी सप्ताह मना रही है, जिसका विषय है पृथ्वी के लिए आशा, मानवता के लिए आशा। विश्व भर के कैथोलिक समुदाय स्थानीय स्तर पर आम घर की देखभाल और पर्यावरण की रक्षा पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को ट्वीट कर कैथोलिक समुदायों को पर्यावरण की देखभाल पर सप्ताह भर चलने वाले वैश्विक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, कल यानी रविवार को लौदातो सी सप्ताह शुरू हुआ। मैं सभी को हमारे आम घर की देखभाल में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें हमारी क्षमताओं और रचनात्मकता को एक साथ रखने की जरूरत है। उधर वार्षिक लौदातो सी सप्ताह में फिलीपींस के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष पाउलो वर्जिलियो डेविड ने जलवायु संकट के खिलाफ अधिक गंभीर कार्यवाही की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, कृपया आइए हम जलवायु आपातकाल की स्थिति को घोषित करने में एक हो जाएं। उन्होंने जलवायु संकट को दूर करने के लिए तत्काल और सक्रिय उपाय करने के महत्व पर जोर दिया, जो हमारी सुंदर लेकिन लुप्त प्राय पृथ्वी, हमारे आम घर को प्रभावित कर रही है। उन्होंने विश्व पत्र लौदातो सी की 8वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले वैश्विक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। धर्माध्यक्ष ने कहा, हमारी आशा है कि दुनिया के सभी 6 महाद्वीपों के कैथलिक न केवल साथी कैथलिकों के साथ चलना सीखेंगे, बल्कि इस दुनिया के हर साथी इंसान के साथ चलना सीखेंगे। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य पूरे मानव परिवार को एक साथ लाना है, ताकि पृथ्वी हमारे आम घर की रक्षा की जा सके। उधर संत पापा फ्रांसिस की एक नई किताब प्रकाशित की गई है, जिसमें संत पापा फ्रांसिस ने पश्चिमी शक्तियों द्वारा अफ्रीका के निरंतर शोषण की निंदा की है। अफ्रीका से दूर रहें, अफ्रीका का दम घोटना बंद करें, या शोषण की जाने वाली खदान या लूटी जाने वाली भूमि नहीं है, अफ्रीका अपने भाग्य का नायक खुद बने। इस साल की शुरुआत में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अपने पहले दिन संत पापा फ्रांसिस के ये शब्द थे। 22 मई को वाटिकन पब्लिशिंग हाउस ने एक नई किताब के विमोचन की घोषणा की, जो इतालवी में लिखी गई है, हैंड्स अप अफ्रीका। इस किताब में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा के दौरान संत पापा के सभी संदेशों और दक्षिण सूडान की यात्रा के तुरंत बाद के उनके संदेशों को एकत्रित किया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण रूप से पुस्तक में न केवल संत पापा की आवाज है, बल्कि उन लोगों की भी है जिनसे वे अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात किए थे। DRC और दक्षिण सूडान दोनों ही देश संघर्ष से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। संत पापा फ्रांसिस ने युद्ध पीड़ितों की गवाही सुनी और उनकी कहानियां भी खंडों में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावना नाइजीरियाई नारीवाद लेखिका चिमांडा नियोजी अदिची द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने कहा कि पुस्तक मुझे कोंगो के लिए आशा की एक छोटी सी जुल्फ लाती है और प्यारे एवं टूटे फूटे महाद्वीप के लिए, जिसे मैं अपना घर कहती हूँ। संत पापा फ्रांसिस ने इस वर्ष 31 जनवरी से 5 फरवरी तक DRC और दक्षिण सूडान की प्रेरिती का दौरा किया। सप्ताह भर की यात्रा, जिसे उन्होंने शांति की तीर्थ यात्रा के रूप में संदर्भित किया, जिसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त देशों में सुलह को बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी हस्तक्षेप से उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। DRC में उन्होंने सरकारी अधिकारियों, धर्माध्यक्षों, युवाओं से मुलाकात की और कहा, अफ्रीका के राजनैतिक उपनिवेशवाद का स्थान आर्थिक उपनिवेशवाद ने ले लिया है, जिससे उन्होंने समान रूप से दास्ता कहा। इस बीच दक्षिण सूडान में उन्होंने सामंती राजनेताओं को संबोधित किया, जिनके बीच संघर्ष ने देश को तबाह कर दिया। इस बात पर जोर दिया कि अब यह कहने का समय आ गया है, इस तरह का संघर्ष अब और नहीं। उधर एड टू द चर्च इन नीड और फिडेस एजेंसी ने नाइजीरिया में एक और कैथोलिक पुरोहित के अपहरण होने की सूचना दी। ओकिग्वे धर्म प्रांत के चांसलर ने कहा कि दक्षिण पूर्वी इमो राज्य में ओकिग्वे LGA के क्रिस्त राजा पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जूड किंग्सले का 19 मई को उस समय अपहरण कर लिया गया, जब वे ओकिग्वे के ओकी गांव में नवनिर्मित गिरजाघर में यूकारिस्तिक आराधना के लिए जा रहे थे। एड टू द चर्च इन नीड ने एक बयान जारी कर कहा कि वो इस आपराधिक घटना के लिए गहन चिंता व्यक्त करता है। अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद इसे रोकने के लिए कोई गंभीर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण अपहरण जारी है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।